ॐ नमः सिद्धेश ॐ नमः सिद्धेश ॐ नमः सिद्धेश ॐ शुद्धात्मने नमः सम्यक् दर्शन तीर्थंकर भगवान के उपदेश में चारों ही अनुयोगों द्वारा कथन आता है और चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। प्रत्येक अनुयोग का कथन पद्धति, उसकी कथन पद्धति और उस अनुयोग का विषय अलग अलग होता है, फिर भी उसके द्वारा हमें अपने स्वरूप का निर्णय कैसे करना है, इसके लिए हमें ही उसमें से ये वीतरागता निकालने की ट्रिक, उसकी जिसको कहें अभ्यास चाहिए, क्योंकि वहां तो उस विशिष्ट शैली में कथन होगा, परंतु शैली कौन से अनुयोग की कैसी होती है ये जानना हमारी जवाबदारी है। देखो, नहीं व्यवहार नय का कथन होता है, निश्चय नय का कथन होता है, तो कौन सा कथन कैसा है, उसका क्या अर्थ लेना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको नहीं नहीं देखो यहाँ ये ऐसा लिखा है ना, तो हम उस पर शब्द पर उंगली रख के बताए देखो यहाँ क्या लिखा है, परंतु उस लिखने के पीछे का प्रयोजन हमें अभिप्राय उसका जानना चाहिए। यहाँ दो पैर होती है तो हिताबेन पूछती है कि जैनाबेन आप चाय के आप कॉफी, आप क्या कहते हैं? चाय। उन्होंने पूछा था आप चाय हो कि कॉफी हो, क्या पूछते हैं आप चाय के कॉफी, इतना आप क्या पियोगे ऐसा पूछा था क्या? समझ जाते हाँ, परंतु यहाँ नहीं समझते ना, यही तो बात है। वही ऐसे ही यहाँ भी कथन पद्धति जो जैसी है ना, वैसे समझना ये हमारा काम है, और नहीं समझते है तो हम एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई यहाँ तो ऐसा लिखा है और आप तो ऐसा कहते हो, तो इसका अभिप्राय तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो अभिप्राय समझना ये हमारी मूल बात है, अभिप्राय समझना ये बात अपनी है। देखो ये चार अनुयोग क्या है उसको देखते थोड़ा, फिर अपना विषय चलेगा। तो जैन मत में ये जो उपदेश है, जैन मत का उपदेश, वो तो चार अनुयोग में होता है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कथानुयोग तो एक ही बात है, तो वहां जो तीर्थंकर चक्रवर्ती वगैरह महापुरुषों के चरित्र जिसमें बताए जाते हैं कि कैसे कैसे वो वैभव था, फिर भी उसको छोड़कर उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की, किस तरह से उन्होंने साधना की और मोक्ष चले गए, ये प्रथमानुयोग में होते हैं। फिर कर्णानुयोग में पूरे त्रिलोक का वर्णन होता है, गुणस्थान मार्गणास्थान का वर्णन होता है उसमें। उसमें तो निमित्त का कथन किया जाएगा, कौन से कर्म होते हैं उसके निमित्त से क्या क्या बातें बनती है, कैसे कैसे बंद होते हैं, कैसे उदय होते हैं, कर्मों में संक्रमण वगैरह कैसे कैसे बातें चलती है, ये सब इसमें बताया जाएगा। अब जो गृहस्थ मुनि के धर्म का जो आचरण है, देखो सम्यक दर्शन होने के पश्चात शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ या ये मेरी क्रिया है, ऐसी उस जीव की मान्यता नहीं रहती। ये शुभ भाव करना ही चाहिए ऐसी भी मान्यता छूट जाती है। तो ऐसी मान्यता छूटने पर, सम्यक दर्शन होने पर, अब वो श्रावक के और मुनियों के आचार कैसे होते, उनकी क्रिया कैसे होती है। देखो जब मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसकी क्रिया का उपदेश देंगे तो उसका मिथ्यात्व का पोषण ज्यादा होने का चांस होता है। चांस होता है, सबका होता है ऐसी बात नहीं है, परंतु क्या करना चाहता है वो, तो तत्व को तो भूल जाता है और बस क्रिया को पकड़ता है और मैं मोक्ष मार्ग में हूं मानता है। तो इसलिए ये जो क्रिया का जो चरणानियोग का उपदेश है वो श्रावक और मुनि, श्रावक किसको कहना, तो श्रावक के जो अनुव्रत है यानी पंचम गुणस्थान वर्ती को यहाँ श्रावक कहा। तो क्या वो हम व्रत नहीं कर सकते, कर सकते, परंतु यहाँ मुख्यता किसकी है, द्रव्यानियोग के सिद्धांतों की। तो ये जो मुनि के आचरण, श्रावक के आचरण, वो चरणानियोग के ग्रंथों में बताए जाते हैं। जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया है, देखो सम्यक दर्शन ये सबसे शुरू की प्राथमिक स्टेज है, लो लेवल की, हमारे लेवल की सबसे प्राथमिक चीज है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है, सम्यक यानी सही, यथार्थ, दर्शन यानी श्रद्धा, किस संबंधी, अपने स्वरूप संबंधी। तो अपने को जानना है तो मैं हूं तो मैं पर से भिन्न हूं, तो मुझे अपने को जानना है तो पर को भी ऐसा जानना है कि यह मैं नहीं हूं। और फिर जो सात तत्वों की बात आपको दोपहर में भी आई थी और भी आएगी, उस संबंधी जो कोई उसका सारा जो तत्व का निर्णय है उसकी बात भी उसकी होगी। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये सबसे पहला है। आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, हाउ मेनी जीरोज आर देयर ऑन 1? फाइव, फाइव में काम चलेगा, 7, अच्छा 7, तो 7 0। तो हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमने कहा 1 अभी हमारे पास नहीं है, चलो पहले 0 ही इकट्ठा करेंगे। तो हमने 4 0, 5 0, 6 0, 7 0 इकट्ठे किए, तो हमारा करोड़ जल्दी हो जाएगा कि नहीं जल्दी? तो क्या हुआ, अरे उसके बदले 7 0 के बदले अकेला 1 ही रहते तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती उसकी। फिर उसके बाद 1 1 1 1 0 आ जाएगा, तो 0 के जगह हम व्रत लिखेंगे और सम्यक दर्शन के जगह 1 आंकड़ा लिखेंगे। तो उसको कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना के व्रत, जैसे अंक बिना बिंदी, एकड़ा बिना ना मिंडा। तो इसलिए सम्यक ने अपना स्वरूप, सम्यक ने कुछ अन्य चीज नहीं है, मैं स्वयं कौन हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, तो मुझे अपना स्वरूप पहचान, क्योंकि ये सारे जगत को जानने वाला मैं हूं और मैं ऐसा अंधा हूं कि सबको देखता हूं अपने को ही नहीं देखता। कभी हमें आश्चर्य लगता है, देखो दुनिया में इतनी चीजें हैं सारी, उसमें इतना निर्णय करते हैं हम, इतना अपनी बुद्धि से निर्णय करते हैं, परंतु क्या अपना सही निर्णय हुआ है कि नहीं, हम अपने आप को पूछेंगे। तो ये अभी हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभिप्राय में गलती चल रही है। तो इसको हम ग्रंथों के आधार से, उपदेश के आधार से, क्योंकि ये उपदेश किसने दिया है, सर्वज्ञ वितराग भगवान ने दिया, उन्होंने वो मार्ग अपनाया है, प्रकट किया है और फिर बाद में बताया। आपको पता होगा शायद, तीर्थंकर जो होते हैं मुनि दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के समय से मौन होता है उनको, वो कुछ नहीं बोलते ना कोई उपदेश देते, और जब केवल ज्ञान होता है तो उनकी वाणी खिलती है और सहज रूप से पूरी दुनिया उस वाणी के द्वारा जानती है। उस वाणी को भी क्या कहा मालूम है आपको, भगवान की वाणी को क्या कहते हैं, दिव्य ध्वनि। हाँ, जिन वाणी तो कहते ही है, दिव्य, दिव्य क्यों कहते, ऐसी कुछ अद्भुत वाणी है। क्या वाणी की अद्भुतता है भाई, ऐसी अद्भुत है कि सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। देखो उसमें तो 700 यानी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा होती है। आपको ये पता है, जब गणधर देव, गणधर भी कौन होता है, एक नियम है कि जो जीव वहां जाके मुनि दीक्षा अंगीकार करता है ना भगवान के सामने, बहुत सारे जीव करते हैं, परंतु गणधर होने वाला जीव पहले से मुनि नहीं है, वहां जाके उसने मुनि दीक्षा अंगीकार की होती है। और जो मुनि दीक्षा अंगीकार करते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं तब उनके चार ज्ञान प्रकट होते हैं। चार ज्ञान के अर्थ कौन जानता है? हाँ बोलो। हाँ, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। और उनके सारे हृदय केवल ज्ञान नहीं है, बाकी सब श्रुत ज्ञान में मैक्सिमम पॉसिबल जितनी उसकी कैपेसिटी वो सब उस अंतर्मूर्त में प्रकट होती है, सातवें गुणस्थान में जाते ही। ऐसे वो विशिष्ट बुद्धि के धारक है, वहां तो भगवान की मात्र ओम ध्वनि खिरती है, उसको तो बीजाक्षर कहा है, उसमें ओम ऐसे भी स्वर नहीं है, ये तो हमने उसको एक चिन्ह दे दिया और हमने उसका एक उच्चार किया, जैसे वो मेघ गर्जना होती है ऐसी कुछ वहां ध्वनि निकलती है मात्र। और यहाँ ज्ञान की उनकी ऐसी योग्यता हो जाती है, उसमें तो ये सारा जान लेते एट ए टाइम। उनके ऐसा भी वृद्धि प्रकट होती है गणधरों के कि एट ए टाइम इतने भाषा वाले पूरे चक्रवर्ती की सेना हो, वहां कितने तिरंजे हाथी है, घोड़े है, बाकी सेना है, कितने वाद्य है, कितने अलग अलग प्रांतों के लोग है और अपनी अपनी भाषा में कुछ गड़बड़ चल रही है उनकी, तो सभी की भाषाओं को एट ए टाइम जानते। जैसे हम यहाँ कोई मान लेते कि इंटरनेशनल कुछ बात चल रही है, कोई जर्मन है, कोई चाइनी है, कोई जापानी है, सभी अपने अपने। अब हम कहते महिला सम्मेलन शुरू हुआ है, क्यों? महिलाएं बोलती है ना ज्यादा, एट ए टाइम सभी अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, कच्ची भी बोलेंगे, चाइनीज भी बोलेंगे, क्यों? सभी अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, तो एट ए टाइम चल रहे सभी भाषाओं का उनको एक साथ एक युगपत जानते हैं। कौन? गणधर की बात चल रही है, केवल ज्ञानी जानेंगे वो बात अलग। तो उस ओम ध्वनि में इतनी सारी बातें एट ए टाइम है, तो उनके इतनी सारी भाषाओं में वो अकेले सब कुछ एक साथ जान लेते हैं। और बाकी जो है वो वहां तो सभा में सब आए ना, बारह सभा में, कोई तिरंच है, अब कोई मनुष्य है, अभी मनुष्यों में हम इंडिया की बात करते हैं, कोई गुजराती आया होगा, कोई महाराष्ट्रियन होगा, जैनी आर ऑल ओवर। भाई यार भाई, लोगों का अचरज होता है क्या महाराष्ट्रियन भी जैनी होते? हमने तो बोला, वो लोग हमसे पूछते आप महाराष्ट्रियन, हमने बोला हम महाराष्ट्रियन नहीं है, हम माइग्रेटेड गुजराती है। हाँ, ये ओरिजिनल महाराष्ट्रियन ये लोग है। हाँ,
तो ओरिजिनल महाराष्ट्रियन भी
जैन है, ओरिजिनल ये है। अरे देयर मोर देन व्हाट यू थिंक, गांव 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 मा। हाँ, देर आर थाउजेंड्स ऑफ जैन।
साउथ इंडिया,
साउथ इंडिया में तो साउथ इंडियन इज फुल ऑफ जैन। हमारे सभी आचार्य साउथ, देखो सभी तीर्थंकर उत्तर के हुए और सभी आचार्य कुंकुंद आचार्य, ये सभी साउथ के हुए, बड़े बड़े आचार्य सारे साउथ के हुए। ये बिहार नाम कैसे पड़ा मालूम है? हाँ, ये तीर्थंकरों का विहार होता था वहां पर, इसलिए वो बिहार से बिहार हो गया। ये जितने सारे ग्रंथ लिखे वो देखो साउथ में अभी भी इतने कितने मंदिरों में ग्रंथ पड़े, तो जिसका अर्थ लगाना भी आजकल मुश्किल हो गया, इतने सारे ग्रंथों की संपदा है हमारे पास, हमको फुर्सत नहीं उसको पढ़ने की, समझने नहीं आता क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बदल गए ना, हम ट्राई करेंगे तो जरूर समझ में आता है। अरे कैसा पुरुषार्थ? खाने का पुरुषार्थ चलता है जरूर, देखो देखो मैं तो कहती हूँ ये हमारे ऐसे बच्चे हैं ना, इनको जरूर इंटरेस्ट लेना चाहिए।
इसको तो बहुत
इंटरेस्ट। और आपको एक चीज दिखाऊंगी मैं, ये जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका ना, इसमें पंडित टोडरमल जी ने संदृष्टि अधिकार लिखा है कोड लैंग्वेज में, आप देखेंगे तो ये भाषा भी समझेगी नहीं कैसे कैसे कोड लैंग्वेज है, उसमें सारे अनंत और असंख्यातों के गणित थे उसमें, और इतने प्राकृत जिसको कहते हैं ना आपके आजकल के कैलकुलस है, लॉग टेबल है, वो सारे प्राकृत में है ओरियन सूत्र। आप यदि जरा देख लो इसको, कुछ अभी समझ में आता है कि नहीं आता, और जरूर आपको प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी सब भाषा समझ ले। हाँ हाँ, नहीं मैं तो आपको एक नमूना पेश करती हूँ, ये अपनी धरोहर है, ये अपने भगवान के द्वारा चली आई बात है, हमारे तक आज तक ये टिकी हुई है, ये हमारा सद्भाग्य है और हम इसमें जरूर कुछ प्रयत्न करें तो इसको जान सकेंगे, ऐसी बात नहीं जान सकते, ख्याल है? हाँ नेचुरल ही शुड मेक एफर्ट्स एंड लर्न समथिंग मोर अबाउट यू. चलो हम देखते हैं यहाँ, ये जो हम यहाँ अनुयोगों की बात कर रहे थे तो चरणानुयोग में तो क्रिया की मुख्यता से बात होती है, और उसमें भी किसी भी चरणानुयोग का ग्रंथ निकाल के देखना, उसमें सबसे पहले में पहला अधिकार जिसको कहते हैं अध्याय, वो होता है सम्यक दर्शन अधिकार. रत्नकरण शावकाचार्य देखो, भगवती आराध्य, कोई भी ग्रंथ लेना तो सबसे पहले में पहले क्या करना चाहिए तो वहां लिखा है सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए. आचरण की क्रिया की बात है ना, तो क्रिया में सबसे पहली कौन सी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की. फिर उसके लिए क्या करना, तो वो सात तत्व क्या है, मैं कौन हूं, पर क्या है, मेरा क्या स्वरूप है, ये सब उसमें आता है. तो ये जो द्रव्यानुयोग है उसमें वो छह द्रव्य सात तत्व आदि का निरूपण किया जाता है और वहां से हम जान लेते हैं. अब ये कर्णानुयोग आदि की जो कर्णानुयोग का प्रयोजन क्या है, आप कहेंगे द्रव्यानुयोग पढ़ाओ ना, ये कर्णानुयोग क्यों पढ़ाते हैं, आपकी कोई स्पेशलिटी दिखानी है क्यों, ये इतने मगप क्यों करना, तो उसका क्या प्रयोजन है हम देखते हैं. यहाँ पर कर्णानुयोग मां जीवोनी व कर्मोनी विशेषता, यानी जीवों की भी विशेषताएं ने उसके और उसके अलग अलग एंगल से उसके डिटेल्स बताएंगे, कर्मों की भी अलग अलग अवस्थाएं विशेषताएं ने अवस्थाएं बताएंगे, तथा त्रिलोक आदिक नि रचना, त्रिलोक की रचना ने जो तीन लोक जिसको हम कहते हैं, पूरा लोकाकाश, पूरे विश्व की क्या रचना है, कहां कौन सी बातें है और वहां कौन कौन जीव रहते हैं और उनकी कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, कहाँ के जीव कितने धर्म कौन प्रकट कर सकते हैं, वो मरकर कहाँ जाते हैं, उनके वहां कैसी कैसी पोजीशन क्या होती है, कहाँ तक जा सकते हैं, ये सभी जो ये त्रिलोक सार में आता है उसमें भी अत्यंत कठिन से कठिन गणित भी है, तो जिसके द्वारा हम जान सकते हैं. गणित में तो कोई उस काल का गणित और आज का गणित इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, 2+2 तो 4 ही होने वाले है, तो वहां भूमिति की भी इतने गणित है कि उसके द्वारा हम जान सकते कि ये कितना एडवांस साइंस था उस जमाने में भी. तो कहते इसकी इसका निरूपण इसका व्याख्यान करके जीवों ने धर्म मां लगावे छे, वो गुजराती मां वाचे सब गुजराती, आप हिंदी हो,
गुजराती
मेरे सामने गुजराती पुस्तक है. जे जीव धर्म मां उपयोग लगावा इच्छे छे ते जीवोना गुणस्थान मार्गनादि भेद तथा कर्मोना कारण अवस्था अने फल, कर्म आने के कारण क्या है, उनकी क्या क्या अवस्था बनती है और उसके उदय में वो कैसे कैसे फल देते हैं, कोने कोने केवी केवी रीते होय छे इत्यादि भेद तथा त्रण लोकमा नरक स्वर्गादिना ठेकाना ओळखी, ये सभी बताने का प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं पाप थी विमुख थई धर्म मां लागे छे. जब त्रिलोक की रचना ऐसी है और वो सर्वज्ञ ने बताई ऐसा जब ख्याल में आता है और वो पाप का फल भोगने के ठिकाने हैं, देखो नरक का वर्णन अगर सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसी कैसी वहां अवस्था होती है, कौन से नरक में कैसी कैसी बातें चलती है. तो ये पाप का यहां तो कोई छूट भी जाएगा, वो इंडिया में वसीला लगा के भी छूट जाते हैं ना, हाँ जज को पैसा खिलाओ और अपने जैसा कर लो, तो यहाँ कोई वो कर्म जो बांधते हैं ना वो तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कर्म का हिसाब रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है जैसे अन्य मति मानते हैं, ऑटोमेटिक वैसी बातें बनती ही और उसका फल भी वैसा मिलता है निमित्त से हो, हाँ जीव अपने परिणामों के कारण वहां वैसा फल पाता है. वही जो एवा विचारों में उपयोग रमी जाए, तो देखो कर्णानियोग क्यों पढ़ना बहन, अभी जब हम कर्णानियोग पढ़ते हैं, कर्म की थ्योरी पढ़ते हैं, उसकी सूक्ष्मता से वर्णन पढ़ते हैं, तो हमारा उपयोग इधर उधर भटकता ही नहीं, वो क्या चल रहा है इतना कंसंट्रेशन होता है, वो घंटा कहाँ चला गया, डेढ़ घंटा पता ही नहीं चलता, तो हमारे कोई लौकिक के भी विचार आते हैं क्या मन में उस समय, हमारा उपयोग उसमें सूक्ष्म होता है कंसंट्रेशन होता है, तो हमें अभी आज क्या सब्जी बनानी है, आज कौन घर में आने वाले, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, और ऐसे खाली बैठे हो तो तो कितने अरे वो आने वाले हैं, अभी तक नहीं आने वाले, क्या हुआ, कार से आने वाले होते, तो वो दुनिया भर की बातें चलती रहती है। तो कहते हैं पाप प्रवृत्ति छूटी स्वयं तत्काल धन उपजे छे तथा तेना अभ्यास थी तत्वज्ञानी प्राप्ति शीघ्र थाय छे। करणान योग के अभ्यास में तो वहां ज्ञान की विशुद्धता निर्मलता होती जाती है, क्योंकि हम सत्य जान रहे हैं और सत्य जानते हैं और डिटेल्स में जानते हैं, तो हमारा ज्ञान और क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। आउ सूक्ष्म अने यथार्थ पदार्थ कथन जैन मत मा ज छे, अन्य ठेकाने नथी एवो तेनो महिमा जानी ते जैन मत नो श्रद्धानी थाय छे। ऐसा नहीं तो लगता ना, वो भी कहते हमारा ईश्वर है, हम भी कहते हमारा ईश्वर है, कौन साचा। तो जब इतनी डिटेल इतनी सूक्ष्म बातें जानते हैं तो उसकी सत्यता की प्रतीति हो जाती है। बीजू जे जीव तत्वज्ञानी होए, पहले जो तत्वज्ञानी नहीं थे, समय दृष्टि नहीं थे, उनको जानने का क्या फल है वो बताया। अब जो जो उनको समय दर्शन हो गया, अभी तो नहीं पढ़ना ना कुछ, अभी क्या आवश्यकता है, अभी तो हम मौज मस्ती करेंगे, क्यों चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे तो अभी तो ऊपर गया ना, जो पर्वत के शिखर पर चढ़ गया है, अरे उसको तो गिरने के ज्यादा चांसेस है। तो वो देख 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 कर चलेगा ना, वहां पहले रास्ते पर चल रहा था और स्वच्छंद था, कैसा भी चल रहा था, अभी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ा नहीं अभी चल रहा है, तो ज्यादा केयरफुल होगा वो। अब जो तत्वज्ञानी ऑलरेडी है ते आ कर्णान योग नो अभ्यास करे तो तेने आ तेना विशेष रूप भासे छे। विशेष रूप का अर्थ है पहले उसने जीवादिक तत्व जाने थे, अब जीव तत्व जाना, अजीव तत्व जाना, तो अजीव में कर्मों के इतने सारे भेद जाने तो उसकी विशेषता और उसको दृढ़ता से प्रतिभासित होती है। देखो पोते जाने छे हवे तेनाज भेद कर्णानियोग मां कर्या छे तेमा कोई विशेषण तो यथावत निश्चय रूप छे। देखो क्या कहते हैं, जब हमने द्रव्यानियोग में पढ़ा था कि उपादान से ही कार्य होता है निमित्त से नहीं, कर्णानियोग पढ़ते हैं तब वो बात ख्याल में आती है कि कुछ तो निरूपण यथार्थ है जो उपादान की ओर से किए जाते हैं और कोई उपचार सहित व्यवहार रूप होई छे। अभी उसमें और भी डिटेल बताए हैं, हम इसमें नहीं जानेंगे। देखो यहाँ इतनी बात बताना चाहते कि कर्णानियोग के अभ्यास से वो तत्वज्ञान निर्मल निर्मल होता जाता है और भी हर एक अनियोग का प्रयोजन यहाँ बताया है। हम कर्णानियोग का प्रयोजन वहां से देखना चाहते थे, अभी अपनी जो पर्याप्ति की जो बात चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
चारों अनुयोग से तत्वज्ञान
की प्राप्ति
होता है।
हाँ, बिल्कुल चारों ही अनुयोगों का अभ्यास चाहिए और उसका बिल्कुल मेल कैसा लगाना, क्योंकि कथन पद्धति अलग अलग है ना।
हाँ,
तो कहीं तो व्यवहार का निरूपण उपचार से होता है और कहीं कहीं निश्चय से निरूपण होता है, तो उसमें से सही ने यथार्थ किसको कहना, जो जैसा है उसको वैसा कहना उसको हम कहेंगे ये यथार्थ है ना निश्चय, जो है नहीं परंतु उपचार से कहना वो होगा व्यवहार। व्यवहार यानी क्रिया और निश्चय यानी वो आत्मा आत्मा करना ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या कहा, जो चीज जैसी है उसको वैसी कहना, जैसे अभी आपके पास तो मिट्टी का ये घी का घड़ा नहीं होगा ना, शक्कर की बरनी तो है, हाँ आपके घर में है कि नहीं, शक्कर का डब्बा बरनी किस में रखते हैं आप, शक्कर की बरनी है। तो हमने आपको पूछा क्या चाय की, कि चाय भी नहीं पीते, चाय पीती, चाय की भी बरनी है, चाय की भी बरनी, अच्छा तो हमने सीधे साहब कहते नहीं है, चाय पिलाएंगे, तो हमने पूछा क्या आपके पास चाय की बरनी है शक्कर की बरनी है, तो हमने कहा हाँ हमारे घर में शक्कर की बरनी है। उन्हें बोला दिखाओ तो सही कितनी आश्चर्यकारी, चाय से भी बरनी बनती है।
अब इंडिया वाले पकड़ते हैं।
हम पकड़ कर हम दृष्टांत दे रहे बहन, और ऐसा हम लौकिक में कहते भी हैं। हम कहेंगे नहीं वो चाय की बनी कहाँ रखी है, हिता बहन के घर में आया आपको चाय बनानी है, तो हिता बहन के वो कपड़ अलमारी खोलना वो वहाँ ऊपर रखा है, वो टपर वेयर है ना उसमें रखा है। देखो देखो संयोग की अपेक्षा से हम क्या कहते हैं, जिस बरनी में हमने चाय या शक्कर रखी है उस बरनी को हम चाय की बरनी या शक्कर की बरनी कहते हैं। क्या बरनी शक्कर से बनी है क्या नहीं है, तो इसको कहेंगे उपचार कथन। संयोग की अपेक्षा से बताते हैं, इसी को व्यवहार कहते हैं। तो सहचर है ना उसका, तो उसको हम संयोग देखकर उसको कहेंगे, संयोग की अपेक्षा कथन करेंगे। कथन करने में कोई विरोध नहीं है, कथन ऐसा ही होता है लौकिक में। हर बार वो ऐसा जिस बरनी में चाय रखी है वो बरनी देखे ऐसा नहीं कहते हैं, वो शॉर्ट होता है, तो ये उसको कहते हैं उपचार कथन। और निश्चय कथन क्या होगा, वो प्लास्टिक की है, कांच की है, स्टील की है, जो कोई है उस धातु की है ना, ऐसा भी कहते हैं ना ये मेरी पुस्तक है, ये कवर वाली पुस्तक मेरी है और वो रेड कवर वाली आपकी है, ऐसा भी कहने का है। तो पुस्तक तो ये तो पुस्तक तो पुस्तक है, वो तो पेपर का है, पुस्तक पेपर से बना हुआ है, जैसे चांदी की थाली आपके घर में, तो ये किसकी है हमने पूछा, तो आपने कहा मेरी है, देखो इस पर मेरा नाम लिखा है, तो चांदी के थाली ऊपर आपका नाम लिख दिया जैनाबे, तो आपकी हो जाएगी कि चांदी की रहेगी, तो चांदी की थाली चांदी की है कहना वो निश्चय है, और चांदी की थाली को जैना बेन की है कहना वो व्यवहार है। तो ये निश्चय और व्यवहार थाली में है क्या कथन में है, बोल एक निश्चय थाली होगी और एक व्यवहार थाली होगी, आप कौन से थाली में खाना खाते हो बेन, निश्चय के व्यवहार के देखो ये निश्चय व्यवहार इतना आसान है,
बहुत अच्छी तरह समझ गया। अच्छा वो आप ही मेरे को
अब हम निश्चय से समझ गए,
अब निश्चय से क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी भोली है, सब सब अच्छा है, चलो चलो। तो इसको कहते हैं निश्चय का कथन और व्यवहार कथन में होता है, ये ख्याल है ना। जैसे मिट्टी के हमें कोई वस्तु बनाए, मिट्टी का बैल बनाए, तो वो मिट्टी का है पर बैल जैसा बनाए ना, तो हम कहेंगे ये बैल है, कह देते हैं ना उसको। हमने एक चित्र गाय का चित्र या हम बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चों को जब सिखा रहे तो ये सिंह है, ये गाय है, घोड़ा है, वाघ है, कहते हैं ना उनको, सिखाते भी है वहां। तो ये जो गाय है क्या वो सचमुच गाय है कि गाय का चित्र है, तो चित्र को भी गाय कह देते हैं। तो वो व्यवहार गाय है क्या निश्चय गाय है, क्योंकि कथन में आए ना। हाँ, तो निश्चय गाय दूध देती है कि व्यवहार गाय दूध देती है, ऐसा ही जो हम व्यवहार से कहते हैं उससे धर्म नहीं होता। निश्चय धर्म तो अपने में होता है, आत्मा का धर्म आत्मा में। धर्म क्या है, धारयति इति धर्म, धारण करते उसको धर्म कहते। अग्नि क्या धारण करता है, तो उष्णता धारण करता है। आत्मा क्या धारण करता है, अपने गुणों को धारण करता है, जैसे ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण है उसको धारण करता है, वो आत्मा का धर्म है। आत्मा के उन धर्मों को पहचान कर उसी को जानते रहना और उसी में मैंपना स्थापन करना, ये धर्म होता है। और उसी को सम्यक दर्शन कहेंगे, उसी को वितरागता कहेंगे, और उसी से हम जिस धर्म को प्राप्त करना चाहते उसकी शुरुआत होती है। परंतु क्या हुआ है, महावीर भगवान ने तो बताया, परंतु अभी हम भूल गए ना सब, इतने साल हो गए, इसलिए फिर हमें ग्रंथों के आधार से उसकी याद करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ यही बात है, कर्णानुयोग हो, त्रव्यानुयोग हो, चरणानुयोग हो, हरेक की कथन पद्धति अलग होने पर भी प्रयोजन सबका एक ही है, अपने को जानना। कहीं निश्चय से कथन होगा ऐसा ही है ऐसा ग्रहण करना, जहां व्यवहार से उपचार से दो द्रव्यों का इकट्ठा कथन होगा, इसने इसको किया, गुरु से ज्ञान हुआ, कर्म से बंध हुआ, दो द्रव्यों का मिलकर कथन है, तो यहाँ समझ लेना बिल्कुल कि ये व्यवहार कथन है। तो ये कथन क्यों किया, तो हम उसको या तो निमित्त है या उसके साथ है। जैसे हम कहते हैं एक इंद्रिय जीव, जीव द्रव्य जब कहेंगे तो उसमें ना कोई इंद्रिय होती है ना कोई शरीर होता है, क्योंकि द्रव्य किसको कहेंगे, ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुणों के समूह को हमने जीव कह दिया। तो ऐसे जीवों को कितनी इंद्रिया होती है, 1, 2, 3, 4 या 5 है, एक भी नहीं। जीव द्रव्य को तो ये इंद्रिया होती है, ऐसा हम किस अपेक्षा से कहते, संयोग की अपेक्षा से। जीव द्रव्य का स्वभाव अगर देखेंगे तो केवल ज्ञान की उसमें शक्ति है, पर्याय में अभी क्या है, हीनता है, और संयोग में शरीर है। तो जो हम कहते ना ये पृथ्वी कायिक है, पृथ्वी काय का शरीर है, उसका चल रहा है, ये हम संयोग की अपेक्षा उसको कहते हैं। या जीव को भी हम कहते हैं कि ये जिंदा है, अब कहते ये मरा है, ये लिविंग बॉडी है, डेड बॉडी है, वो क्या है, जीव के संयोग की अपेक्षा उसको नाम देते हैं। इसको कहते हैं निश्चय व्यवहार, जो कथन में होता है और उसका सही अभिप्राय हमें पहचानना होता है। यहां भी कर्मों की थ्योरी अभी ये सब चलेगी, अब यहां तो पर्याप्तियों में ये बात चलेगी कि जीव कहीं से मरकर अन्य भव में जाता है तो उसको क्या होता है। डॉक्टर हम सब एम्ब्रियोलॉजी सीखे थे ना, तो उस एम्ब्रियोलॉजी से भी यहां ज्यादा सूक्ष्म कथन है, क्या क्या होता है उसकी बात यहां बताई। हम साथ में नहीं सीखे वो डॉक्टर, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि मेडिकल में जाते तो एम्ब्रियोलॉजी सीखेंगे ना। तो यहां कहते हैं ये जो पर्याप्ति क्या होता है इसको जरा हम देखेंगे, क्योंकि हमने वो पर्याप्त अपर्याप्त भेद भी देखे थे आपके। पहले पृष्ठ निकाल के रखना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 129 हिंदी है, गुजराती एक दो पेज कम होगी उसमें। पर्याप्ति का अर्थ है जहां हमने दोपहर में जहां तक पढ़ा था उसके आगे, 128 गुजराती। वहाँ शुरू से नहीं लेना है, उसका दो पेजेस हो गया, तीसरा पेज था। देखो पर्याप्ति संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे, हाँ वहाँ से शुरू करेंगे हम। देखो यहाँ नाम तो लिखा है पर्याप्ति, ये पर्याप्ति कौन सा विषय चल रहा है हमारा उसको पहले देखते हैं। ये जीव संबंधी जो विशेष व्याख्यान है, 20 प्रकार से जीवों का कथन, 20 अलग अलग प्रकार से जीवों का कथन हम सीख रहे हैं, इसको कहते हैं प्ररूपणा। उसमें से एक है गुणस्थान, जीवों के जो 14 गुणस्थानों के भेद है वो सारा विषय उसको कहेंगे गुणस्थान। दूसरा विषय हमने देखा था जीव समास, उसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से की है। जीव समास में हमने देखे थे एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीव होते हैं, उससे एकेंद्रीय के सूक्ष्म माधर और पंचेंद्रीय के संज्ञ संज्ञ, इन सबके पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे 14 तो जीव समास होते हैं। इन सभी 14 जीव समासों में जीव पाए जाते हैं, हम भी अभी तक इन सब में जन्म मरण करके आज मनुष्य में आए। ये मनुष्य पर्याय कितना दुर्लभ है वो हमने दोपहर में बहुत विस्तार से देखा था। अब हमारा तीसरा जो प्रकरण चलेगा यहाँ पर्याप्ति का, तो ये पर्याप्ति क्या होती है, पर्याप्ति का अर्थ होता है पूर्णता। तो किसकी पूर्णता, तो कुछ शक्ति की पूर्णता। कैसी शक्ति, विशिष्ट कार्य की शक्ति। तो कौन सा कार्य है, ये हम कहते हमारे घर में कार्य है, हमें अभी शिविर है या हमारे घर में शादी है, उस कार्य की बात नहीं है। तो यहां अभी जो जीव अन्य भव से मरकर आता है, तो मरकर आता है तो उसका औदारिक या जो कोई उसका शरीर जो दृश्य शरीर है वो तो वही पड़ा रहता है, हम देखते ना। और हम कहते जीव निकल गया, तो निकल गया तो कहां गया, तो मरण होने के पहले आयुबंध उस गति संबंधी सभी प्रकृतियां बांध कर वो चला जाता और निश्चित जगह वो पैदा हो जाता। पैदा होता है का अर्थ क्या होता है, विग्रह गति यानी ट्रांजिट, उसका पहुंचने के लिए किसी को एक समय उसी समय में पहुंचाता है, किसी को एक मोड़ लेकर एक टर्न लेकर दो समय, किसी को तीन समय, किसी को चार समय। एक मोड़ होगा, दो मोड़ हो गया, तीन मोड़ हो गया। ये मोड़ वाली चर्चा शुरू में है 19 पेज के आसपास, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो वहां पहुंचने के बाद वहां तो कोई रेडीमेड शरीर है ही नहीं कि जिसके अंदर जाके वो घुस जाए, हमारे यहाँ तो रेडीमेड कपड़े मिलते हैं ना, वैसा रेडीमेड कोई शरीर वहां पड़ा नहीं कि जो जाके जीव धारण करे। तो क्या होता है, जीव अभी उसके विशिष्ट अलग अलग नाम कर्म के प्रकृतियों का उदय होता है, और उस उदय के कारण जीव में योग यानी कर्म और नो कर्म ने शरीर, उसके परमाणु को ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोहा है तो उसमें तो कोई मैग्नेट जैसी शक्ति नहीं है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम सुना है, उसके ऊपर वो वायर राउंड करके इलेक्ट्रिक करंट ऑन करेंगे तो वो लोहा ही मैग्नेट बन गया। अभी ऐसे ही जीव में वो नाम कर्म के उदय में ऐसी पावर मैग्नेटिक जैसी होती है, क्या होता है उसमें शक्ति, कर्म और नो कर्म वहां परिणमते हैं, हम कहेंगे खींचे आते हैं, आकर्षित होते हैं, ये कहने की पद्धति है। तो वहां जो सभी कर्म परमाणु तो पूरे लोकाकाश में पड़े हैं खींचोगे, तो जहां उत्पत्ति होनी है वहां जैसे उसके योग्य परमाणुओं को ग्रहण करता है। उसके योग्य का अर्थ क्या है, देव नारकी हो गए वो वैकृत जाति के परमाणु ग्रहण करेंगे, मनुष्य तीरियंच है तो औदारिक जाति के परमाणु ग्रहण करेंगे, उसमें भी कोई हल्के परमाणु को ग्रहण करेगा, कोई भारी परमाणु को ग्रहण करेगा वजनदार, कोई जो है वो तो गोरे वर्ण का, कोई काले वर्ण का, क्यों, उसमें भी नाम कर्म की स्पर्श रस गंध वर्ण नाम कर्म के उदय में अपने अपने योग्य परमाणुओं का ग्रहण करता है। हम इसे यहाँ के लोग गोरे क्यों, वहां के काले क्यों, ऐसा हम देखते हैं, तो इंडियन यहाँ आने पर भी इंडियन कलर ही रहता है कि नहीं, तो उस जाति के परमाणुओं को ग्रहण करता है। ये ग्रहण करना ये योग के द्वारा होता है, उसमें विशिष्ट शरीर नाम कर्म का उदय। हमारा अभी कर्मकांड का विषय यहाँ नहीं है, उसके भी बहुत डिटेल्स है, उसमें से जितनी जरूरी है उतनी बात हम यहाँ करेंगे। उसके बाद ये परमाणु तो ग्रहण किए, अभी क्या होता है उसका, उस समय से लेकर जीवों में ऐसी शक्ति यानी अभी उसकी ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है कि जो ग्रहण किए हुए परमाणु है उनको खल रूप और रस रूप परिणाम आए। ये खल क्या होता है, रस क्या होता है, खल यानी सॉलिड और रस यानी लिक्विड। अभी तो परमाणुओं को ग्रहण किया और उसको किसी को सॉलिड रूप किसी को लिक्विड रूप बनाया, ये बनाने की शक्ति, शक्ति ने जीव परमाणु में कुछ नहीं करता है, निमित्त बनता है। जैसे हम देखते हैं ना कर्म के उदय में जीव में यहाँ राग द्वेष होते हैं, वो तो कथन पद्धति दोनों एक समय में होती है, यहाँ पर भी जीव में ऐसी कोई योग्यता उत्पन्न होती है, क्यों, पुराने नाम कर्म के उदय से, कि वो कर्म का यानी शरीर का ग्रहण करे, शरीर के परमाणुओं का ग्रहण करे और उसको सॉलिड लिक्विड बनाए। ये जो शरीर की ये शक्ति उत्पन्न होती है जीव की, उसको कहेंगे आहार पर्याप्ति। पहला नाम क्या लिखा है ऊपर, आहार पर्याप्ति। हम यहाँ थोड़ा पुस्तक पढ़कर फिर आगे की पर्याप्ति का अर्थ देखेंगे।
उस समय भी राग द्वेष चालू है जीव का,
जीव के राग द्वेष हर समय चल रहे हैं
जीव में, कि मुझे आहार
नहीं, ऐसा उसका कोई बुद्धि पूर्वक होता नहीं, कोई इच्छा से नहीं होता कि मुझे, नहीं तो सब चाहेंगे ना मुझे गोरे ही परमाणु चाहिए, अरे काले परमाणु रह जाएंगे फिर, ये चाहने से कुछ नहीं होता। जैसे उसने पूर्व में भाव किए हैं, कषाय किए हैं, उस समय उसके नाम कर्म भी बंधे हैं और उन नाम कर्म का जैसा उदय आता है वैसे उसको शरीर की रचना मिलती है। हम यहाँ भी देखते, कोई जन्म से ही रोग पीड़ित है, कोई जन्म से ही लूले है, कोई जन्म से अंधे है, कोई जन्म से काले, कैसे भी है, और कोई कैसे अलग अच्छे जिसको हम कहेंगे, ऐसे क्यों है, हम कहते भी अरे इसका ऐसा कर्म का उदय है। तो कर्म का उदय इसका अर्थ क्या है, उसने ऐसे भाव पूर्व किए थे, वो भाव को दर्शाने वाले, कर्म कुछ नहीं कराते, हमने देखा था वो तो थर्मामीटर है, इंडिकेटर है, ज्ञापक है, वो जीव का कुछ भला बुरा नहीं करता, वो तो बताते हैं, देखो ये सीधे सामने हमारी फोटो निकाली और हमने आंखें बंद की थी, तो हमने पूछा भाई हमारी ऐसी फोटो क्यों निकाली, तो होते हम जब फोटो निकाल रहे थे आपको बताया था, आपने क्यों आंखें बंद की, बात सही है ना, कोई बच्चा होगा तो जीभ बाहर निकालेगा या कोई और कुछ करेगा, करता है कि नहीं करता, या दूसरे किसी को सेंडी लगाएगा ऐसा ऊपर से, हम पूछते ऐसा क्यों फोटो आया, अरे तुमने जैसा मुंह किया वैसा फोटो आया, वहां मुंह किया तब तो फोटो आया है, और अभी फोटो देखकर रोते हो, वैसे ही अभी हम किस तरफ देख कर रोते हैं, कर्मों की तरफ, क्या करे हमारा कर्म का आकरा उदय है। तो ये कर्म किसने बांधे थे, जीव नहीं, उस समय उसके परिणाम कैसे थे ये दिखाने वाला फोटो है तेरा। ये तेरे ही पूर्व भोग के परिणाम है, तो हमको अच्छे चाहिए, हमें अच्छे संयोग चाहिए, तो क्या करना है? अच्छे परिणाम करेंगे तो अच्छा बंध होगा, तो अच्छा फल मिलेगा संयोग में, तो हमें क्या मिलेगा? भव ब्रह्म। देखो समझ में है ना क्या कहते हैं? क्योंकि अभी बुरे संयोग है ना, तो क्या करो? पुण्य करो, तो क्या होगा? अच्छे संयोग मिलेंगे, तो फिर क्या होगा? चक्र चलेगा, चक्र चलेगा। कब तक? अनादि से आज तक अनंत काल गया है, और ऐसे ही चलते रहोगे तो ऐसा ही चलेगा। तो क्या करना है? अरे संयोग भिन्न है, मैं जानने वाला भिन्न हूँ, ऐसा पहले में पहले स्वीकार करो। तो पहले में पहले संयोगों को ठीक ठाक करना कि नहीं करना? बोलो बेन, हमें संयोगों से भिन्नता जाननी है। शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, तो ठहरो जरा, मैं ब्यूटी पार्लर जाके आती हूँ, फिर वो शरीर की भिन्नता सोचूंगा। बेन तब चलेगा कि नहीं चलेगा? इन्हें पहले मैं संयोग ठीक ठाक कर लू, बेटी की शादी कर लू, बहू लाऊ घर में, फिर मैं भेद ज्ञान करूंगी। अरे वो भेद ज्ञान करने तक ये मनुष्य भाव टिकेगा कि नहीं टिकेगा? दोपहर को आपने स्टोरी सुनी थी। हाँ। तो यहाँ यही बात होती है, अन्य भाव से आता है तो उसके कर्म उसके साथ है, तो उसमें कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थिति बनती है उसको देखते। देखो पर्याप्ति का अर्थ होता है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्ति के शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अर्थात जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती, उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। और उसमें पर्याप्त अपर्याप्त नाम कर्म का उदय निमित्त है। ये क्या है देखेंगे। जैसे हमने एक प्लॉट लेयर घर बांध रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम क्या कहेंगे? चल रहा है, रचना उसकी चल रही है, अभी अधूरी है, पूरा नहीं हुआ है, परंतु पूरा होने वाला। तो पूरा होने पर उसको पर्याप्त कहेंगे, और जब तक नहीं पर्याप्त हुआ तब तक अपर्याप्त कहेंगे। पर्याप्त नाम कर्म का जिसके उदय है उसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होती ही है, और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनकी पर्याप्ति शुरू तो होती है, शक्तियां शुरू होती है, क्योंकि वहां भी कुछ न कुछ शरीर की रचना तो होती है अपर्याप्त जीवों के लिए, भले उनकी लाइफ स्पैन अत्यंत छोटी है। हिसाब लगाया था ना हमने कल, एक श्वास के 8-10 बार यानी 18वां भाग, यानी 3/4 सेकंड का भी 18वां भाग किया था हमने, तो इतनी छोटी लाइफ स्पैन है, फिर भी वहां भी शरीर का परमाणु का ग्रहण, वो परिणमाना आदि जो कार्य है, आदि जो शक्तियां वो शुरू हो जाती है, उसकी पूर्णता होती नहीं है और जीव मर जाता है। तो पूर्णता होना उसको कहेंगे पर्याप्त, और पूर्णता नहीं होना उसको कहेंगे अपर्याप्त। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके नाम भी देखते हैं। सब मिलाकर कुछ 6 पर्याप्ति है। ये जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसी के ये 6 पर्याप्ति हो। कौन कौन से जीवों में कितनी पर्याप्ति होती है उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले में पहले उनके नाम क्या है, 6 पर्याप्तियों के नाम यहाँ देखेंगे। तो एक है आहार पर्याप्ति, पुस्तक में मिला ना आपको। हाँ। दूसरी है शरीर पर्याप्ति, तीसरी इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, पांचवी भाषा पर्याप्ति, और छठी मन पर्याप्ति। बेन आप रिपीट करेंगे। हाँ आप पढ़ना है पुस्तक में से। हाँ।
आहार पर्याप्ति 6 पर्याप्तियों छे त्या प्रमाणे छे, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति,
मन पर्याप्ति। बरोबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने देखा था कि संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। संगी पंचेंद्रियों के मन भी है, वचन भी है, और शरीर वो काया भी है, तो उनके 6 के 6 पर्याप्ति होती है। अब जो असंगी पंचेंद्रिय जीव है उसको इसमें से कौन सी पर्याप्ति नहीं होगी? मन पर्याप्ति नहीं होगी, तो उसकी कितनी पर्याप्ति होगी? 5। तो मेरा प्रश्न है चतुर इंद्रिय जीवों को कितनी पर्याप्ति होगी? हाँ चतुर इंद्रियों को भाषा है कि नहीं है? हाँ, मन पर्याप्ति नहीं है। देखो भाषा कौन कौन से इंद्रियों वाले की है? अकेले पंच इंद्रियों को है। देखो जहाँ रसना इंद्रिय वहाँ भाषा भी है, ऐसा याद करो। एक इंद्रियों को वचन नहीं है, द्वि इंद्रिय को वचन है, तीन इंद्रिय को है, चतुर इंद्रिय को है, पंच इंद्रिय संगी असंगी सबको वचन है, परंतु असंगी तक मन नहीं है। यानी द्वि इंद्रिय जीवों को भी भाषा पर्याप्ति होगी, तीन इंद्रिय को भी होगी, चतुर इंद्रिय को भी है, असंगी को भी है, परंतु उनको मन पर्याप्ति नहीं होगी। तो उनको हम क्या कहेंगे, कितनी पर्याप्ति होगी?
पांच।
एकेंद्रियों की भाषा होती है कि नहीं होती?
नहीं,
नहीं होती। तो एकेंद्रियों की कितनी पर्याप्ति है?
चार
पर्याप्ति। ख्याल में है ना, एकेंद्रियों के चार, द्विंद्रिय से असंगी तक पांच, और संगी पंचेंद्रियों तक छह। ये पर्याप्ति तो ये उसका कारण है, बाद में जो मन के द्वारा जानने का कार्य होगा, भाषा रूप परिणमन होगा, ये सारा जो है ना, जिनकी पर्याप्ति पूरी होती है उनका ही वो कार्य देखेंगे, वो हम प्राण के स्वरूप में बाद में देखेंगे, अभी हमारी पर्याप्ति चले। पर्याप्ति कारण है, और इसके द्वारा जो जानने रूप कार्य चलेगा, मन के द्वारा जानना, वचन बोलना, ये सारी बातें हैं ना। देखो हम कहते हैं ना, मैं बोल सकता हूँ, ये क्यों लगता है? क्योंकि जीव निमित्त है, और वहां भाषा का शब्द रूप परिणमन वो भाषा वर्गना का हो रहा है। ये शक्ति जो जीव में है निमित्त पने की ही चल रही है, परंतु ये जो शक्ति उत्पन्न हुई ये क्या है? वो भाषा पर्याप्ति। तो जिसके भाषा पर्याप्ति पूरी हुई है उसी के ये वचन रूप कार्य चलेगा, जिसकी मनोपर्याप्ति पूरी हुई है वही मन के द्वारा जानने का कार्य करेगा।
पर्याप्ति कारण है,
पर्याप्ति कारण है, और वो जो उसका कार्य है वो तो लाइफ टाइम तक चलेगा। कहीं से मरकर जीव आता है, एक छोटे से अंतर मुहूर्त में ये सारी पर्याप्तियां डेवलप हो जाती है, और उसका जो कार्य है वो लाइफ टाइम तक चलता है। कौन सा कार्य? शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करना, उसको खलर रस रूप परिणमना। अभी ये जो रस रूप है उसमें से सारे लिक्विड अवयव हो जाएंगे, इसको हम लिम्फ ब्लड वो वीर आदि कहते हैं, और फिर जो सॉलिड है उसमें से सॉलिड अवयव बनेंगे, हड्डी है, स्नायु है, चर्म यानी चामड़ी है, स्किन है, ये सारे उसमें से बनेंगे। तो ये जो बनाने का कार्य हम देखते हैं, ये तो रीजनरेशन तो चल रहा है लाइफ टाइम तक। तो ये जो कार्य है तो उसके द्वारा होता है। पर्याप्ति जिसकी पूरी हुई है ये कारण है, और वो लाइफ टाइम तक परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर रूप परिणमाना, ये कार्य उसका चलता रहेगा, ये उसका कार्य होगा। तो ये शुरू में कहीं से मरकर आता है तो पहले में पहले ये पूरी होती है पर्याप्ति, और फिर उसका कार्य चलता रहता है। हम आगे और बढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। देखो इन छह पर्याप्तियों में से एकेंद्रिय जीवों को पहली चार पर्याप्ति होती है, उनके भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती। द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में पांच पर्याप्ति होती है, उनके मन पर्याप्ति नहीं होती, और संगी पंचेंद्रियों में छह पर्याप्ति पाई जाती है। इन पर्याप्ति के छह भिन्न भिन्न नाम हैं, इसलिए जाहिर है कि उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे। ये शक्तियां हैं, तो इन शक्तियों से अलग अलग कार्य होने वाले हैं, इसीलिए अलग अलग नाम भी दिए। देखो एक बात समझना, यहाँ जो पर्याप्ति बताई है, जब जीव कहीं से मरकर आता है और शरीर धारण करने के पहले समय से ही उसकी पर्याप्ति शुरू होती है। छह पर्याप्ति अभी संगी पंचेंद्रिय है, छह के छह एक साथ शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे हम देखते हैं ना वो रनिंग रेस होती है, सभी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, वैसे सबकी पर्याप्ति एक साथ शुरू होना चालू हो जाता है। इस पॉइंट पर उसकी एक पर्याप्ति पूरी होती है, यहां तक उसको भी एक छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है, उसके बाद ये पर्याप्ति पूरी होगी, उसके बाद ये होती है, इसके बाद ये, और फिर लास्ट में मन पर्याप्ति। परंतु इसका भी काल, सबका मिलकर भी काल एक अंतर्मुहूर्त ही होता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के भेद बहुत है। ये बड़ा वाला 48 मिनट वाला नहीं समझना, बहुत छोटा है वो।
छह पर्याप्ति को छोटा अंतर्मुहूर्त,
छोटे अंतर्मुहूर्त में सारे ही हम कहेंगे यथा योग्य अंतर्मुहूर्त, जो केवल ज्ञानी ने जाना है। अंतर्मुहूर्त इतना ही कहेंगे हम। अब यहाँ एक एरो किया और यहाँ एक एरो किया, इसका क्या प्रयोजन है? आपने अभी 14 जीव समाज देखे है, उसमें देखा था कि जो श्वास के 18वें भाग में मरते हैं, इतनी छोटी आयु वाले जीव है, अब उनकी भी पर्याप्तियां छह के छह यहाँ शुरू हो गई एक साथ। अब यहाँ पर उसके एक पर्याप्ति पूर्ण होती, पर उसके पहले पहले ये जो एरो लिखा है यहाँ पर, ये ग्रीन वाला, यही पर उसका मरण हो जाएगा। इतनी छोटी आयु, इसको लब्धि अपर्याप्त कहेंगे। क्या कहेंगे?
लब्धि
अपर्याप्त। उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ये सारे शब्द पुस्तक में लिखे हैं, आने वाले हम थोड़ा उसको पहले सुनकर फिर पढ़ेंगे। यहाँ दूसरा एक एरो लिखा है, तो ये तो लब्धि अपर्याप्त को यही पर मर जाता है, उनकी आगे की पर्याप्ति नहीं होती, तो उनकी तो अभी बात खत्म। जो पर्याप्त जीव है, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनके छह पर्याप्ति अभी आरंभ हुई है और क्रम क्रम से एक 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 पूरी होने वाले ही है। जब यहां तक शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तब उसको पर्याप्त कह देते, और उसके पहले पहले इतने काल तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहते। निर्वृत्ति, निवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं, रिटायरमेंट, निर्वृत्ति। यानी इसकी रचना, शरीर की रचना यहाँ जो है, उस शक्ति का कार्य यहाँ पूरा हुआ है, तो उसको कहेंगे निर्वृत्ति पर्याप्त। जो पर्याप्त जीव है, जैसे देव है, नारकी है, हम गर्भज मनुष्य है, ये नियम से पर्याप्त ही है, परंतु जब तक ये पर्याप्ति नहीं पूरी होती है तब तक उसको निर्वृत्ति पर्याप्त कहेंगे। और बाद में वो क्रम से सारी पर्याप्ति पूरी होती ही है, तो उसको हम फिर बाद में उसको पर्याप्त कहेंगे। एक बात ख्याल में लेना है, ये जो पर्याप्त जीव है, पर्याप्ति पूरी होने के टाइम में कहीं भी अभी मरेंगे नहीं। पर्याप्ति पूरी होने पर यथा योग्य जितनी आयु बांधकर आया है उतनी आयु भोग कर मरेगा। ओनली ये लब्धि अपर्याप्त है वो यहाँ पर मरेगा। ये तो निवृत्ति अपर्याप्त दिखाने के लिए बताया है, यहाँ कोई मरण बिरण नहीं होता उसका। तो ये सारा जानना क्यों हा? हमारे सिर पर बोझ डालते हो सब पर्याप्ति का। यहाँ क्या बात, ये हमें जानने की रुचि सहज होती है? जीव मरकर जाता है तो क्या होता है उसका, उसमें क्या क्या बातें होती है? देखो ये अपर्याप्त अवस्था आपने पूछा था ना, क्या यहाँ पर आयु का ये कर्म का बद्ध होता है, परिणाम होता है, जीव राग द्वेष करते हैं, क्या कहते? हम तो राग द्वेष यानी बाह्य कोई उसकी निशानी दिखे तो राग द्वेष होते ऐसा मानते हैं। अब यहाँ पर जीव का चारित्र गुण क्या कर रहा है, सोया है क्या, जागता है क्या, क्या कर रहा है? मिथ्या दृष्टि है तो चारों कषाय चोपड़ी उसकी विद्यमान है, तो उसके कषाय राग द्वेष उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो। वो कैसा करता होगा, अभी तो अभी वहां से मरकर आया है, अभी उसे किसी को देखा नहीं, क्या राग द्वेष करेगा? तो हमने क्या माना है, ये पर के कारण ही उसके राग द्वेष होते हैं। अरे उसके ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सभी गुणों का परिणाम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है वो अभी आप सामान्य गुणों में देखेंगे।
नहीं, मैं क्या पूछती थी, वो आहार ग्रहण करने का राग,
वो भी राग से नहीं होता। आहार यानी शरीर के परमाणु, शरीर के परमाणु ग्रहण करना, कितने करना, कैसे करना, कौन से वर्ण के, सब कर्म के उदय में अपने आप ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अभी हम चाहते हैं मैं गोरे ही गोरे परमाणु ग्रहण करूं, तो क्या मेरी इच्छा से होगी क्या? क्योंकि अभी भी ग्रहण करना हर समय चल रहा है, हर समय यहाँ पर अनंत जीव के शरीर के परमाणु आते हैं और अनंत पूर्व में लिए हुए परमाणु छूट जाते हैं। शरीर के हो, कर्म के तो आते ही आते हैं, शरीर के भी अनंत अनंत परमाणु हर समय आते हैं और पुराने जो जन्म के समय से लिए हुए उसमें से अनंत चले जाते हैं। जीव वही का वही है और हम क्या देखते हैं मिरर में, हाँ ठीक ठाक है, अरे अनंत चले गए, अनंत नहीं आए। बर्थडे किसका मनाते हम? अरे उसमें तो अनंत अनंत परमाणु ये चल रहा है, ऐसा चक्कर आते हैं नए चले जाते हैं, मरण के समय तक थोड़े ही बाकी रहते हैं। अभी उसकी थियरी कुछ अलग है, ये इसकी पुस्तक में है शुरू शुरू में, नौ कर्म की जो रचना है उसमें। अभी हम अभी तो हम पर्याप्ति को देख रहे हैं। अपना समय होने को है 54 मिनट हो गए, 55। हाँ देखो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, तुम जानती हो कि जीव कहीं से मरकर मिला, अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है और वहाँ नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नौ कर्म वर्गणा कहा था। शरीर, मन, भाषा, श्वासोश्वास संबंधी परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खलरूप और रसरूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है, उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। ये हमने देखा था। अब दूसरी जो है वो शरीर पर्याप्ति, वो भी शक्ति है। इसमें क्या होता है, इस शक्ति के कार्य रूप खल और रस भाग रूप परिणमित हुए इन पुद्गल स्कंदों में से खलरूप, खलरूप यानी सॉलिड पुद्गलों को हड्डी, चर्म, चर्म यानी चामड़ी, स्किन आदि स्थिर अवयव रूप तथा रसरूप पुद्गल स्कंदों को रक्त, वीर्य आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की जो शक्ति, उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। अब इंद्रिय पर्याप्ति कहना किसको, उसको पहले जानेंगे फिर वो परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा इसलिए अटपटी लगती है कि वो मूल ग्रंथों में से ली हुई, उसको समझना ऐसा इंद्रिय पर्याप्ति अभी कहेंगे। तो इंद्रिय पर्याप्ति में जहां भी द्रवेंद्रिय, आंख, चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुए ना, बाहर शरीर की रचना जहां होनी है, वहां के जो आत्म प्रदेश है वहीं से उनको वर्ण को जानने की शक्ति होती है। देखो जो आत्म प्रदेश यहां है कर्ण के अंदर, वो किसको ग्रहण करते हैं, अपने विषय को। कौन सा विषय, ध्वनि को जानेंगे, आवाज को जानेंगे। यहाँ नाक के अंदर जो आत्म प्रदेश यहाँ हो गए वो किसको जानेंगे, गंध को जानेंगे। तो विशिष्ट इंद्रियों के वहां के आत्म प्रदेशों में विशिष्ट विषय को जानने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसको कहेंगे इंद्रिय पर्याप्त।
लेकिन आत्म प्रदेश
आत्म प्रदेश घूमते हैं, परंतु जब वहां आएंगे तब वहां से यानी दिस विल बी देयर, जिसको हम कहेंगे ना, वहां उस रूट से वो जानेंगे, वहां आने पर वो जानेंगे, यानी वहीं से जानने की शक्ति होगी, अन्यत्र नहीं। सभी आत्म प्रदेशों में
ज्ञान गुण,
ये ज्ञान गुण तो एक अखंड है, तो संपूर्ण जो आत्म प्रदेश है उसमें तो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, पांचों इंद्रियों को द्वारा जानने की शक्ति है, परंतु वो देखने का कार्य कहां से होगा, यहीं से होगा, सुनने का कार्य यहीं से होगा। तो ये तो हमें शॉर्टकमिंग है ना, क्यों, क्योंकि वो वहीं से जानेगा। यहां इसके उंगली के द्वारा देखने की कोई शक्ति नहीं, यहां आत्म प्रदेश तो है परंतु इनको देखने की कोई शक्ति नहीं है, वर्ण को ये ग्रहण नहीं कर सकती है, तो वहीं से होगी। तो ये जो उसमें डेवलपमेंट होती है उसको कहेंगे इंद्रिय पर्याप्ति। हम आगे की पर्याप्ति देखते हैं, श्वासोश्वास पर्याप्ति, यानी जो आहार वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद लिए है उसको श्वासोश्वास रूप परिणमाना। उसमें हम श्वासोश्वास यानी केवल लंग्स और नाक से वो नहीं लेना, क्योंकि एक इंद्रियों में भी होता है श्वासोश्वास, जो पृथ्वी कायिक है, जल कायिक, हाँ उसमें जो कोई वायु का जो होता है ऑक्सीजन का ग्रहण और बाकी जो, ये उसको हम श्वासोश्वास कहेंगे, वो सभी इंद्रिय वालों में होता है, उसको कहेंगे श्वासोश्वास पर्याप्ति। अब भाषा वर्गणारूप पुद्गल है, उसको भाषा रूप परिणमाने की शक्ति, उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं, यानी आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है उसमें। देखो ये निमित्त कौन है, उसमें अभी जीव में ऐसी शक्ति हुई ना, अब हम बोल रहे हैं, तो ये बोलने की शक्ति जो है, जो दिविंद्रिय से लेकर हमने पंचेंद्रिय तक देखी है, वो भले अक्षरात्मक है या अनक्षरात्मक है, द्विंद्रिय तीनिय हमारे जैसे भाषा नहीं बोलेंगे, उनकी कोई विशिष्ट साइंस होगी, उनकी जो कोई ध्वनि करेंगे हम देखते हैं, तो वैसी जो शक्ति है बोलने की उसको कहेंगे भाषा पर्याप्ति। और मन पर्याप्ति है, देखो आगे लिखा है ना कि द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति होती है, और फिर मन से क्या होगा, गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश का ग्रहण आदि जो भाव मन का कार्य है, ये जानने का कार्य उसको भाव मन कहेंगे, तो उसकी जो शक्ति होती है उसको मन पर्याप्ति कहते हैं। अब इसकी और डिटेल बातें हम अपने आगे के व्याख्यान में देखेंगे। बोलो 2400 भगवान।
तो विचार